लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय है बुधवारीय आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में एकत्रित हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario di catechesi sulla lettera ai Galati abbiamo potuto mettere a fuoco qual è per San Paolo il nucleo centrale della libertà.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र पर अपनी धर्म शिक्षा के अंतर्गत हमने स्वतंत्रता के मूल मंत्र पर चिंतन किया, जो संत पौलुस के जीवन का अहम भाग है। वास्तव में हम सभी यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पाप और मृत्यु की दास्ता से स्वतंत्र किए गए हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम सभी स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमें कृपा में मुक्ति मिली है। हम प्रेम में स्वतंत्र किए गए हैं, जो ख्रिस्तीय जीवन का सर्वोत्तम और सबसे बड़ा नियम बनता है। हमें प्रेम के कारण उदारता में यह स्वतंत्रता मिली है। संत पापा ने कहा कि आज मैं इस नए जीवन के संबंध में उस बात पर जोर देना चाहूंगा जो हमें खुले रूप में सभी संस्कृति और लोगों का स्वागत करने और सभी लोगों और संस्कृति को स्वतंत्रता हेतु अग्रसर करती है। वास्तव में संत पौलुस कहते हैं कि जो यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह कोई महत्व नहीं रखता कि वे यहूदी हैं या गैर यहूदी। महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। संत पौलुस के विरोधी उनकी इस नवीन सोच का विरोध करते हैं, इस धारणा के साथ कि वह प्रेरिताई के अवसर का लाभ उठाने या सभों को खुश करने हेतु इस विचार को प्रसारित करते हैं। अपनी संकुचित धार्मिक परंपरा के कारण धार्मिक मांगों को न्यूनतम बनाते हैं। हम देख सकते हैं कि सुसमाचार प्रचार की नवीनता का विरोध न केवल हमारे समय किया जाता है, बल्कि इसका एक प्राचीन इतिहास रहा है। संत पौलुस यद्यपि इस संबंध में चुप नहीं रहते हैं, वे परेसिया, एक यूनानी शब्द जो साहस और दृढ़ता को अभिव्यक्त करता है, में इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं अब किसी का कृपा पात्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। थिसलनीकियों के नाम अपने पत्र में संत पौलुस अपने विचारों को पहले ही अभिव्यक्त कर चुके थे, यह कहते हुए कि उनके प्रवचनों में चाटुकारी की बातें कभी नहीं निकली और ना हमने लोभ से प्रेरित होकर कुछ किया, हमने मनुष्य का सम्मान पाने की चेष्टा नहीं की।
Il pensiero di Paolo si mostra ancora una volta di una profondità ispirata.
Sant Paulus ke vichar hamare liye punah apne mein ek gehri prerana ko vyakt karte hain. Vishwas ka swagat karna unke liye un baaton ko asvikarna nahi jo sanskriti aur parampara ke hriday mein hai, balki un baaton ka jo navinta aur susamachar ki shuddhata par badha utpann karte hain. क्योंकि स्वतंत्रता जो हमें यीशु ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान से मिली है वह संस्कृति और परंपराओं से युद्ध नहीं करती जिसे हमने पाया है। वरन यह उनमें एक नई स्वतंत्रता मुक्ति की नवीनता को लाती है जो सुसमाचार से आता है। वास्तव में बपतिस्मा में मिली स्वतंत्रता हमें पूर्ण मानवीय सम्मान में ईश्वर की संतान बनाता है, जिसके फलस्वरूप हम अपनी संस्कृति की जड़ों में मजबूती से जुड़े रहते हैं। वहीं हम अपने को वैश्विक विश्वास के लिए खोलते जो सभी संस्कृति में प्रवेश करता, हम मौजूद सत्य की गुठली को पहचानते, उसे विकसित करते और उसमें निहित अच्छाई को पूर्णता में लाते हैं। यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में मिली स्वतंत्रता को स्वीकार करना हमें दूसरे लोगों को स्वीकारने और उनमें पूर्णता लाने में मदद करता है, जो सच्ची परिपूर्णता है। संत पापा ने कहा, अपनी स्वतंत्रता के बुलावे में हम सुसमाचार के अर्थ को दूसरे सांस्कृतिक संदर्भों में अच्छी तरह समझते हैं। यह हमें दूसरी संस्कृतियों में व्याप्त सच्चाई और अच्छाई का सामना करते हुए यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार को घोषित करने में मदद करता है। यह अपने में सहज नहीं है। यहाँ हम अपने लिए बहुत सारी परीक्षाओं को पाते हैं, जहाँ हम अपने जीवन शैली को दूसरों में थोपने की चाह रखते हैं, मानो वह अपने में सबसे अच्छी और परिष्कृत हो।
Quanti errori sono stati compiuti nella storia dell'evangelizzazione volendo imporre un solo modello culturale.
सुसमाचार प्रचार के नाम पर इतिहास में कितनी सारी गलतियां हुई हैं, क्योंकि हम केवल एक संस्कृति के आदर्श को लागू करने की चाह रखते हैं। कभी कभी एक विचारधारा को लागू करने के लिए हिंसा का भी उपयोग किया गया। इस भांति हम कलीसिया में मूल्यवान बहुमुखी स्थानीय अभिव्यक्ति का अभाव पाते हैं, जो विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों के द्वारा लाया जाता है, लेकिन यह ख्रिस्तीय स्वतंत्रता के एकदम खिलाफ है। संत पापा ने चीन में प्रेरिताई कार्य हेतु मत्तेयो रिची और भारत में रॉबर्ट डी नोबली के द्वारा अपनाए गए स्थानीय परंपराओं की चर्चा की, जिसे कलीसिया ने अस्वीकार किया था। संक्षेप में, संत पौलुस में स्वतंत्रता की समझ को हम ख्रिस्त के रहस्य से प्रकाशित और फलहित होता पाते हैं, जो अपने शरीर धारण के फलस्वरूप हर किसी के जीवन का अंग बनते हैं, जैसे कि वैटिकन द्वितीय महासभा कहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम एक ना हो, ऐसा नहीं, बल्कि अनेकता में हमारे बीच एकता हो। अतः यहाँ से हमारे लिए हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान उत्पन्न होता है, जहाँ हम किसी के ऊपर विशेष संस्कृति को नहीं थोपते हैं। ख्रिस्तीय होने और अपने को कैथोलिक कलीसिया कहने का अर्थ हमारे लिए यही है। यह एक समाज शास्त्रीय संप्रदाय नहीं है जो दूसरी कलीसिया से अंतर स्पष्ट करता हो।
कैथोलिको एन एडजेक्टिव Che significa universale.
कैथोलिक अपने में एक विशेषण है जिसका अर्थ वैश्विक है। इसका अर्थ हमारे लिए यही है कि हम स्वाभाविक रूप में दूसरों के लिए और दूसरी संस्कृतियों के लिए सभी समय खुले रहते हैं, क्योंकि ख्रीस्त सबों के लिए जन्मे, मरे और जी उठे हैं। इन सारी चीजों के अलावे संस्कृति अपने स्वाभाविक रूप में निरंतर परिवर्तनशील है। हम इसके बारे में चिंतन करें कि संस्कृति के इस ऐतिहासिक परिवर्तन के क्षण में हम सुसमाचार की घोषणा हेतु कैसे बुलाए गए हैं, जहां उन्नत तकनीकी की प्रधानता है। यदि हम विश्वास की बातें करें जैसे कि आज से सालों पहले किया जाता था, तो हम नई पीढ़ियों के लिए संदर्भहीन हो जाएंगे। ख्रिस्तीय विश्वास की स्वतंत्रता हमारे जीवन दर्शन और संस्कृति को जड़ित नहीं बल्कि गतिशील बनाती है। अतः हम अपनी स्वतंत्रता को पकड़े रहने की ना सोचें। यह हमें एक उपहार की भांति मिली है जिसे देखरेख हमें करनी है। यह स्वतंत्रता हमें सदैव आगे बढ़ने में आह्वान करती है, जिससे हम पूर्णता को प्राप्त करें। यह तीर्थयात्रियों की स्थिति है, यह राहगीरों की स्थिति है जो सदैव आगे बढ़ते हैं गुलामी से स्वतंत्रता की ओर, जिससे वे पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। यह स्वतंत्रता यीशु ने हमें दी है। वे हमें गुलामी से मुक्त करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की राह में अग्रसर करते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Jesus हमेशा तुम्हारा ही है, वो दिल से तुम्हें चाहता भी तो है, तुम उसका ही दामन पकड़ के चलो, कभी तुम फंसोगे न मझधार में। यीशु हमेशा तुम्हारा ही है, वो दिल से तुम्हें चाहता भी तो है, तुम उसका ही दामन पकड़ के चलो, कभी तुम फंसोगे न मझधार में। सही रास्तों को दिखाने यहाँ वो बनके मसीहा पैदा हुआ, तुम्हारे लिए ही चढ़ा क्रूस पर, मरा भी तुम्हारे ही वो प्यार में। यीशु हमेशा
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार 13 अक्टूबर को संत घोषणा प्रकरण संबंधित परम धर्म पीठ समिति के अध्यक्ष कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात की। संत पापा ने परम धर्म पीठीय संत प्रकरण परिषद द्वारा ईश सेवक एवं ईश सेविका घोषणा के लिए प्रस्तावित आज्ञाप्तियों का अनुमोदन दिया। उम्मीदवारों में ईश सेवक संत पापा जॉन पॉल प्रथम एवं 4 पुरोहित और 3 धर्म बहने हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। ईश सेवक पापा जॉन पॉल प्रथम का जन्म 17 अक्टूबर 1912 को फोर्नो दी कानाले में हुआ और 28 सितंबर 1978 को वाटिकन के प्रेरितिक भवन में मृत्यु हुई। दूत संदेश की छोटी धर्म बहनों के धर्म समाज की संस्थापिका ई सेविका मरिया बेनेरिस ड्यूक का जन्म 14 अगस्त 1898 को सलमीना कोलंबिया में हुआ और 25 जुलाई 1993 को मेडेलिन कोलंबिया में मृत्यु हुई। धर्म प्रांतीय पुरोहित ई सेवक शहीद पिएत्रो आर्टिज जे जराटे और येसु समाजी पुरोहित ईश सेवक शहीद जोवानी अंतोनियो सोलिनास दोनों 27 अक्टूबर 1683 को वेले डेल जेटा अर्जेंटीना में विश्वास के कारण मारे गए। धर्म प्रांतीय पुरोहित ईश सेवक डिएगो हर्नांडेज का जन्म 3 जनवरी 1915 को जावली नुएवो पेन में हुआ और 26 जनवरी 1976 को एलिकाटे स्पेन में मृत्यु हुई। ऑर्डर ऑफ फ्रायर्स माइनर पुरोहित ई सेवक जुसेपे पोलेटिनी का जन्म 16 अगस्त 1870 को सिविटेला इटली में हुआ और मृत्यु 25 मार्च 1951 को रोम इटली में हुई। द फ्रैटर्निटी ऑफ लिटिल सिस्टर्स ऑफ जीसस के धर्म समाज की संस्थापिका ई सेविका येसु की मगदलीन का जन्म 26 अप्रैल 1898 को पेरिस फ्रांस में हुआ और 6 नवंबर 1989 को रोम इटली में मृत्यु हुई। डॉटर्स ऑफ सांता मरिया दी लेव का धर्म समाज की संस्थापिका ई सेविका एलिजापेता मार्टिनेज का जन्म 25 मार्च 1905 को गालंतीना इटली में हुआ और 8 फरवरी 1991 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। उधर बंदूकधारियों के एक समूह ने सोमवार को उत्तरी नाइजीरिया के कडुना में क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी पर हमला किया जिसमें कई सेमिनारियन घायल हो गए और 3 का अपहरण कर लिया गया। धर्मप्रांत ने मंगलवार को जारी एक बयान में इस घटना की घोषणा करते हुए कहा कि जेम्मा स्थानीय सरकार क्षेत्र के दफन कोगामा के फाइत में स्थित क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी पर हमला सोमवार शाम को हुआ। बयान के अनुसार संत अल्बर्ट संस्थान के भीतर सेमिनारियन रहते हैं, जहां वे कैथोलिक पुरोहित बनने के लिए आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण पाते हैं। बयान में कहा गया कि हमला 11 अक्टूबर शाम 7:30 बजे सेमिनरी के प्रार्थनालय में हुआ। हमले के समय सेमिनरी और संस्थान के रेक्टर, 132 सेमिनारियन, 6 गैर सेमिनारियन, एक प्रबंधक सहित 10 प्रशिक्षक थे। उधर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा समर्थित सरकारी बलों द्वारा किए गए सैन्य अभियानों में दर्जनों सिया हूती विद्रोही घंटों के भीतर मारे गए। रियाद के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यमन में पिछले 24 घंटों में 33 सैन्य अभियानों की रिपोर्ट की है। प्रभावित क्षेत्र मारीब के दक्षिण में है, जहां 8 सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया गया, और इसी इलाके में पिछले रविवार को तवाही जिले में कृषि मंत्री सालेम अल सोकोतराई और अदन के गवर्नर अहमद लामलास के काफिले पर हमला हुआ था। दोनों अधिकारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार बम से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई और कम से कम 7 घायल हो गए। इस बीच पश्चिमी यमनी तट पर विद्रोहियों द्वारा रोके गए 1 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल के साथ जहाज के लिए जोखिम है। सोफर 350 मीटर लंबा तेल टैंकर है, जो सड़ने की स्थिति में है और अब उसके फटने का खतरा है। पहले से ही तेल रिसाव से पूरे आपूर्ति क्षेत्र में एक अपरिवर्तनीय संकट पैदा हो जाएगा। 8 मिलियन लोग पीने का पानी के बिना रह जाएंगे और यह 3 सप्ताह में मछली के स्टॉक को नष्ट कर सकता है। विद्रोही टैंकर की सुरक्षा के बदले पैसे मांगते हैं, इसीलिए यह एक और संघर्ष है जो 7 साल से चल रहा है। 45 वर्षीय जहाज में एक्सोन वाल्डेज द्वारा 1989 में अलास्का की खाड़ी में छोड़े गए तेल की मात्रा का 4 गुना है, जो इतिहास की सबसे बड़ी पारिस्थितिक आपदा थी। उधर तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद बढ़ते मानवीय संकट के बारे में चिंताएं बढ़ने के बीच इतालवी प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी ने मंगलवार को अफगानिस्तान पर चर्चा करने के लिए G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के एक विशेष शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। 15 अगस्त को तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान में मानवीय संकट बढ़ रहा है, जिससे कम से कम 18 मिलियन लोग या देश की आधी आबादी प्रभावित हो रही है, जिससे शरणार्थियों के पलायन की संभावना बढ़ गई है। सूखा, गरीबी और अर्थव्यवस्था में गिरावट, ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिनका अफगानिस्तान में रहने वाले लोग सामना कर रहे हैं। मंगलवार को आयोजित G20 देशों के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह का विशेष शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस द्वारा चेतावनी देने के एक दिन बाद आया कि देश बनाने या तोड़ने के क्षण का सामना कर रहा है। उन्होंने दुनिया से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को ढहने से रोकने का आग्रह किया। श्री गुटेरेस आभासी बैठक में शामिल हुए। संकट से निपटने में संयुक्त राष्ट्र को दी गई केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया। शिखर सम्मेलन, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित किया गया था, सहायता की जरूरतों, सुरक्षा पर चिंताओं और देश में अभी भी हजारों पश्चिमी सहयोगी अफगानों के लिए विदेशों में सुरक्षित मार्ग की गारंटी के तरीकों पर केंद्रित था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।